तो मित्रों, आज है मंगलवार, आप सुन रहे हैं SBS रेडियो का हिंदी कार्यक्रम लौटते परिंदे। मंगलवार के दिन हम कुछ ऐतिहासिक स्मारकों के दौरे पर चलते हैं। तो इस स्मारक का आलेख विजय जयड़ा का है और प्रस्तुतिकरण कुमुद मिरानी का। हुकूमतें ताकत से नहीं, गद्दारों से कायम की जाती हैं। हुकूमतें ताकत से नहीं, गद्दारों से कायम की जाती हैं। बचना उन गद्दारों से जिनकी वफाएं दूसरों के काम आती हैं। बचना उन गद्दारों से जिनकी वफाएं दूसरों के काम आती हैं। ये लिख रहे हैं विजय जायड़ा साहब। और ले चलते हैं हम आपको नमक हराम की हवेली चांदनी चौक दिल्ली में। चांदनी चौक कह लीजिए या पुरानी दिल्ली, ये इलाका उस सूखे नारियल जैसा है जिसकी सूखी जटा को सब्र और मेहनत से उधेड़ने के बाद ही कुछ अच्छा पाने की उम्मीद की जा सकती है। पुरानी दिल्ली में मुगल काल के समय बनी खंडर होती आलीशान हवेलियों में छिपे इतिहास को टटोला जाए तो इतिहास के इस सफर से बहुत सी नसीहतें मिलती हैं। कहा जाता है, अगर पुरानी दिल्ली की गलियां नहीं देखी तो समझ लीजिए आपने दिल्ली ही नहीं देखी। यहाँ मुगल काल में हवेलियों के वैभव की नहीं बल्कि अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए जूझते भारतीयों की दास्तां भी छुपी हुई है। एक ओर जहाँ भारत माता के सपूत आजादी के लिए कुर्बानी दे रहे थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की खुले आम या गुपचुप मदद कर रहे थे। चांदनी चौक इलाके का इतिहास समझने की कोशिश में एक अजीब और गरीब नाम से जानी जाने वाली हवेली की ओर रुख करते हैं। लेकिन अक्सर घर या किसी कोठी का नाम मालिक के परिवार से जुड़े किसी सदस्य के नाम पर होता है, लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं ऐसी हवेली में जो स्थानीय लोगों में नमक हराम की हवेली के नाम से जानी जाती है। हवेली का नाम सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भला इस तरह भी कोई हवेली का नाम हो सकता है। चलिए नमक हराम की हवेली की तरफ चलते हैं। लाल किले के ठीक सामने कुछ दूरी पर चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो से उतरकर फतेहपुरी मस्जिद पर पहुंचने पर अगर आप दुकानदारों से, स्थानीय लोगों से नमक हराम की हवेली के बारे में पूछेंगे तो शायद ही आपको कोई कुछ बता सकेगा। इसका पता बहुत ही मुश्किल है। फतेहपुर मस्जिद से दाएं मुड़ने पर मुख्य सड़क से एक संकरी गली है जो दिखाई ही नहीं देती। खैर, उस संकरी गली से गुजरकर आप पहुंचेंगे 154 कूचा घासी राम की नमक हराम हवेली पर। वहाँ के जो स्थानीय दुकानें हैं उससे निकलने वाले धुएं की वजह से हवेली का बड़ा सा प्रवेश द्वार काला पड़ चुका है और फिर समय के साथ नीरस और बेरस इमारतों की वजह से ये हवेली बिल्कुल बदरंग और बेरंग हो गई है। मुख्य द्वार छज्जे और कानों से झांकते हुए कुछ तत्कालीन निर्माण ही हवेली के अतीत के वैभव को बयान करते जान पड़ते हैं। न वो दालान है, न ही वैभव की झलकी देते हुए वो झरोखे। हवेली के पहले तले पर कई किराएदार हैं और किराया वही सन 70 के दशक के आसपास जो तय हुआ था, सिर्फ 5 या 10 रुपए। आइए अब इस नमक हराम की हवेली के बारे में, इसके इतिहास के बारे में कुछ बातें करें। मुगल काल के अंतिम दौर में मुगल स्थापत्य से बनी ये हवेली भवानी शंकर खत्री की थी। भवानी शंकर खत्री और मराठा योद्धा जसवंत राव बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों इंदौर के मराठा महाराजा यशवंत राव होलकर के यहाँ सेवाएं देते थे। सन 1776 में जन्मे महाराजा होलकर की वीरता पर इतिहासकार एनएस ईमानदार ने उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा है। महाराजा होलकर ने अंग्रेजों को कई लड़ाइयों में हराया था और एक बार तो युद्ध में उन्होंने 300 अंग्रेज सिपाहियों की नाक ही कटवा दी थी। उनकी वीरता से डरे हुए अंग्रेज उनको हराने के लिए दूसरे भारतीय राजाओं को अपनी तरफ करके कई योजनाएं कई षड्यंत्र बनाते रहते थे। 11 सितंबर 1803 को दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में अंग्रेजों और मराठों के बीच द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व मराठों के सिंधिया कर रहे थे और इस लड़ाई में भवानी शंकर खत्री ने मराठों से गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दे दिया। इतिहास में पटपड़गंज युद्ध नाम से प्रसिद्ध इस युद्ध में मराठा हार गए। इस युद्ध में सहायता के लिए अंग्रेजों ने भवानी शंकर को कई तोहफे कई पुरस्कार दिए, जिसमें दिल्ली में जागीर और ये हवेली दी गई। जब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली के नागरिक अंग्रेजों के खिलाफ थे और इस संग्राम में तत्कालीन मुगल बादशाह जफर के साथ वफादार थे, ऐसे वक्त पर स्थानीय लोगों ने भवानी शंकर द्वारा अंग्रेजों को की गई मदद के कारण इस हवेली का नाम नमक हराम की हवेली रख दिया। इस तरह लोक संस्कृति में ये हवेली नमक हराम की हवेली नाम से मशहूर हो गई। जब भी भवानी शंकर यहाँ की गलियों से गुजरते तो लोग उन्हें नमक हराम होने का ताना देते। रोज रोज की जलालत से तंग आकर भवानी शंकर ने यह हवेली ही बेच दी। इस हवेली और कई ऐतिहासिक दस्तावेजों से आसानी से समझा जा सकता है कि विदेशी आक्रमणकारी, बेशक वे कोई भी रहे हों, वे अपनी सैन्य शक्ति की अपेक्षा देश में रहने वाले गद्दारों के बल पर भारत को लूटने और अपनी हुकूमत कायम करने में माहिर थे। बहरहाल देश में छुपे गद्दार क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नसीहत देती गुमनाम हो चुकी ये हवेली आज खस्ता हाल है।